happening. पूर्व अवसर हमारे जीवन में ऐसा कौन से दिन आएगा। बहुत ही सुंदर भाव यहाँ इस पद्य में भरे गए हैं। अनेक बार हमने ये पंक्तियाँ सुनी हैं और अनेक बार इसका पाठ भी किया है, लेकिन अनेक बार पाठ कर लेने के बावजूद भी भाव भाषण नहीं हुआ। हम उसकी गहराई में नहीं गए, हम उस चीज को समझ ही नहीं पाए कि हम क्या बोल रहे हैं और इसमें क्या भाव है। हमें अपूर्वता किस चीज में दिखाई देती है, जगत के अनेक विषय ऐसे हैं जहाँ हमें अपूर्वता दिखती है, जहाँ हमें श्रेष्ठता दिखती है, जहाँ हमें अपनी महिमा आती है। वो सारी महिमा संयोगों की ही महिमा है, वैभव की ही महिमा है। अरे जहाँ त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व मिल गया हो, जहाँ अपने आत्मा के अपूर्व असीमित आनंद का अवसर मिल गया हो, उसे छोड़कर पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझे रहना तो कहाँ की समझदारी का काम है। हमारी आसक्ति घटती नहीं है, हमारी आसक्ति निरंतर विषय भोगों के प्रति बनी ही रहती है। ये कह रहे हैं कब होऊंगा बाह्य अंतर निर्ग्रंथ, जब बाहर से भी निर्ग्रंथ और अंदर से भी निर्ग्रंथ। बाहरी निर्ग्रंथता पंचेंद्रिय विषय भोगों का संबंध टूट जाना, घर गृहस्थी परिग्रह का छोड़ना, इसका नाम बाहर से निर्ग्रंथ पना और अंदर से उनके प्रति ममत्व टूटना, ये वास्तविक आंतरिक निर्ग्रंथ पना। दो प्रकार से निर्ग्रंथ पना होता है, एक बाहरी निर्ग्रंथ और एक अंतरंग निर्ग्रंथ। जगत में ऐसे तो अनेक लोग दिखते हैं जो बाहर से निर्ग्रंथ हो गए हों, लेकिन अंदर से जिनको निर्ग्रंथ पना नहीं आया तब तक उन्हें निर्ग्रंथ नहीं कहते। सच्चा मुनिपना, सच्चा साधक पना, सच्चा आराधक पना ये बाहर से नहीं होता, ये अंदर से होता है। बाहर के छूटने में कोई दम नहीं है, बाहर का तो जीवन परिवर्तन होने पर स्वयं छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है, हम कौन उसे छोड़ने वाले। बाहरी पदार्थों को छोड़ना और ग्रहण करना ये हमारे हाथ में भी नहीं है, थोड़ा सा उदय बदलता है और बाहरी पदार्थ अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि बाहरी संयोगों का मिलना और छूटना ये तो उदय प्रमाण है। जैसा कर्म का उदय होगा वैसे संयोग मिलेंगे, कर्म का उदय बदल गया संयोग बदल गए। घर कब तक रहेगा, मकान कब तक रहेगा, अभी कितने भूकंप आते रहे वहाँ नेपाल में और हमारे उत्तर भारत में, मकान छूट गए, घर से बेघर हो गए लोग, लाखों लोग घर से बेघर हो गए। जापान में 2-3 साल पहले ऐसा रेडिएशन का सारा फैला था, मार्च 2011 की बात है, क्या स्थिति थी सब 4 साल पहले। अच्छे अच्छे वैभव संपन्न लोग सब रोड पर आ जाते हैं, इसलिए बाहर से छूटने की बात नहीं है, अंदर से छूटे। बाहर में छूटना चिरियंचों के भी होता है, नारकियों के भी होता है। नारकी चिरियंच अधिक देह से सब नग्न हैं, सच्चे श्रमण तो है वही जो भाव से भी नग्न है। इन्होंने बाह्य के साथ साथ में अंतरंग निर्ग्रंथता पर भी जोर दिया है, कब ऐसा अवसर आएगा जब मैं अंदर से भी निर्ग्रंथ हो जाऊंगा। संबंधों का तीक्ष्ण बंधन छेद कर कब विचरण करूंगा महत पुरुष के पंथ पर। वास्तव में वो महंत पुरुषों का पंथ कहीं बाहर नहीं है, वो महंत पुरुषों का पंथ तो अपने ही अंदर है, वो रास्ता कहीं बाहर से नहीं जाता। सारी दुनिया धर्म के नाम पर बाहर का रास्ता अपनाती है, धर्म तो अंदर के रास्ते का नाम है। मोक्ष का मार्ग कहीं गिरनार जी होकर नहीं जाता, कहीं सम्य शिखर होकर मोक्ष का रास्ता नहीं जाता। कोई कहे कि मोक्ष जाने के लिए वे शिखर जी चले गए, नेमिनाथ मोक्ष जाने के लिए गिरनार पर्वत पर चले गए, शिखर जी से कितने लोगों ने मोक्ष की प्राप्ति करी। अरे भैया वो शिखर नहीं, असली शिखर तो ये चैतन्य शिखर है। उस पंथ पर चलने की बात कर रहे हैं, विचरूंगा कब महंत पुरुष के पंथ, कौन से पंथ पर चल रहे हैं बोलो। देखिए यदि आप किसी एक गुरु के द्वारा बतलाए मार्ग पर चलने का विचार करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इन्होंने तो आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए सोनगढ़ का मार्ग अपनाया, हमें भी वहां चलना चाहिए। इन्होंने तो आत्म कल्याण करने के लिए सोनागिरी जी का मार्ग अपनाया, इन्होंने तो आत्म कल्याण करने के लिए द्रोणगिरी का, सिद्धायतन का, जयपुर का, समझ लीजिए और भी जहाँ जहाँ अपने को क्षेत्र दिखते हैं जो सिद्ध क्षेत्र हैं, कोई मांगी तुंगी जाता है, कोई गजपंथा की तरफ जाता है, कोई गिरनार जी, कोई पावापुर चला जाता है। अपने को क्या लगता है वही मार्ग है, फिर कौन से मार्ग पर जाएंगे हम? अलग अलग ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष और बाहर में अलग अलग रास्ते पर अलग अलग क्षेत्र पर विचरण करते रहे। तो कह रहे महंत पुरुष के पंथ पर कब जाऊंगा, क्या अर्थ निकलेगा इसका, कौन से पंथ की बात होगी? ये महंत पुरुष जितने भी हैं वे सभी बाहर में किसी भी क्षेत्र में विचरण करते हो लेकिन अंतरंग में अपने एक चैतन्य स्वरूप में ही विचरण करते हैं। एक मार्ग बस और कुछ नहीं, यही कहते हैं श्रीमद जी, एक हो त्रण काल मां परमारथनो पंथ। ये बात कहिए, तीनों कालों में परमार्थ का मार्ग तो एक ही है, मुक्ति का मार्ग दो नहीं है, मोक्ष के मार्ग दो नहीं है कि आप इस मार्ग से चले जाना, आप इस मार्ग से चले जाना, दिगंबर इस मार्ग से जाएंगे, श्वेतंबर इस मार्ग से जाएंगे, हिंदू इस मार्ग से जाएंगे, सबके अलग अलग रास्ते होंगे, बौद्ध धर्म वाले अलग मार्ग से जाएंगे। कौन से भ्रम में हो आप? एक हुए त्रण काल मां, तीनों कालों में परमार्थ का जो मार्ग है, मुक्ति का जो मार्ग है, वो एक ही मार्ग है। जन्म किसी भी कुल में लिया हो लेकिन रास्ता एक ही है मुक्ति को प्राप्त करने का, और वो रास्ता अंदर से जाता है, बाहर से नहीं जाता है। हमने बाहर के रास्तों को तलाशा है, अंदर के रास्ते को नहीं पहचाना। बाहर में क्रियाएं प्रवृत्तियों में उलझा रहता है, ये अंतरंग धर्म को नहीं पहचानता है। ये अंतरंग मार्ग की बात कर रहे हैं, ये सच्चा मार्ग है, ये भेद विज्ञान का मार्ग है, ये कला सिखा रहे हैं यहाँ पर भेद विज्ञान की। कैसे जाऊं मैं, कैसे विचरण करूं मैं अपने अंदर में? अंदर में विचरण करने का माध्यम, उसका साधन ज्ञान है, ध्यान है, आराधना है। इस माध्यम से अंदर में विचरण किया जाता है। देखो बाहर में विचरण कदाचित शारीरिक अस्वस्थता के कारण न कर सके, बाहर में किसी क्षेत्र में जाने में परिस्थितियां बाधक हो सकती है, लेकिन अंतरंग उपयोग की एकाग्रता में कोई परिस्थिति बाधक नहीं है। कभी घर बाधक दिखता है, कभी बिजनेस बाधक दिखता है, कभी बच्चे बाधक दिखते हैं, कभी पत्नी ये कहती है कि कहाँ लगे रहते हो धर्म ध्यान में, नहीं करने दूंगी, क्या करें? अरे भाई, सच्चा धर्म परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, सच्चा धर्म परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलता, सच्चा धर्म परिस्थितियों से निरपेक्ष होता है। जिसे देह की भी अपेक्षा न हो वहां सच्चा धर्म होता है। अभी तो देह को छोड़ करके हम न मालूम कौन कौन सी क्रियाओं में उलझे हैं, बाह्य क्रियाओं में लगे हुए हैं, देह की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, ये खाना, ये पीना, ऐसा उठना बैठना, ऐसे चलना, ये पढ़ना। अच्छा कौन से शास्त्र को पढ़ेंगे तो धर्म होगा? धर्म करने के लिए कौन सा शास्त्र पढ़े बताओ? हो सकता है कोई ज्ञानी धर्मात्मा किसी शास्त्र का नाम भी बतला दें, लेकिन जब तक बुद्धि शास्त्र में विचरण करेगी तब तक धर्म नहीं होगा। धर्म तो अंतरंग परिणमन का नाम है, धर्म तो स्वभाव रूप परिणमन का नाम है। वस्तु स्वभाव धम्मो, धर्म तो वस्तु के स्वभाव का नाम है। और सच में यदि वस्तु स्वभाव धम्मो की ओर से विचार करें तो मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक वस्तु धर्मात्मा है, कोई अपना धर्म छोड़ती नहीं है। मछली अपना धर्म नहीं छोड़ती, नमक अपना धर्म नहीं छोड़ता, आत्मा अपना धर्म नहीं छोड़ता। आत्मा का धर्म है जानना देखना, मछली का धर्म है मीठापना, नमक का धर्म है खारापना। वो अपना धर्म कब छोड़ देगा? अच्छा उस नमक को पानी में मिलाया जाए तब तो वो अपना धर्म छोड़ देगा, सब्जी में मिलाए तो, रोटी में मिलाए तो, आटे में, कहीं भी मिलाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? वो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ता, जहाँ रहेगा अपना स्वभाव प्रदर्शित करेगा, अपने स्वभाव में रहेगा। तो साहब एक बात समझ में नहीं आई, फिर यदि ऐसा है तो फिर हर व्यक्ति धर्मात्मा हो गया, सब स्वभाव से सही थे, सब धर्मात्मा ही है। अब फिर कौन से धर्म का उपदेश दे रहे हो आप कि नहीं नहीं स्वभाव से तो सब धर्मात्मा हैं, लेकिन उस स्वभाव की खबर जिन्हें होती है वे पर्याय में धर्मात्मा होते हैं। हमें पर्याय में उसकी खबर नहीं है, हम पर्याय में उसका विरोध करते हैं। वर्तमान अवस्था में हमें उस स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति ही करना धर्म है। बस आपको ये स्वीकार है या नहीं है, अंदर से यदि इस बात की स्वीकृति है तो हो गया धर्म, और स्वीकार नहीं है तो फिर कुछ भी करते रहो आप। धर्म के नाम पर कितने भी जाप करो, कितनी भी तीर्थ वंदनाएं करो, कितने भी देरासर में जाओ, मंदिर में जाओ, कुछ भी करो आप। व्रत लो, नियम लो, संयम से रहो, साधना करते रहो, भोजन आदि का त्याग कर दो, कुछ धर्म नहीं है। ये सब देह की क्रिया है, ये सब जड़ की क्रिया है, और जड़ की क्रिया में धर्म नहीं होता। पहला धर्म है कि जड़ अलग है और चेतन अलग है, इसको पहचानना। जड़ और चेतन को अलग अलग पहचानना ये पहला धर्म है। देह भिन्न है और चेतन भिन्न है, सब जाकर के धर्म होगा। हम इसी इसके पीछे लगे हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ हमें धर्म शरीर से लगता है। शरीर संभालो, शरीर संभालो, इसकी तरफ ध्यान दो। क्या हो गया है, क्या कितनी सुंदर लाइन है। एक ही लाइन इतनी जबरदस्त है, विचरूंगा कब, वो अवसर कब आएगा जब मैं वहाँ विचरण करूंगा जहाँ महंत पुरुषों ने विचरण किया है। आदिनाथ ने जहाँ विचरण किया अयोध्या में, शांतिनाथ ने जहाँ विचरण किया हस्तिनापुर में, महावीर ने जहाँ विचरण किया पावापुर में, अरे अनंत सिद्ध परमात्मा जिसमें वर्तमान में भी विहार कर रहे हैं, जितने अरहंत परमात्मा, जितने साधक जीव हैं, वे अपने स्वरूप में विचरण करके ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, और सिद्ध अवस्था प्राप्त करके भी अपने स्वरूप में ही विचरण कर रहे हैं। उन साधकों की यहाँ बात चल रही है। वे जिस मार्ग पर चले बस, तो हमें भी वही मार्ग अपनाना है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। उदासीन वृत्ति होगी समस्त प्रभावों से। ये तन केवल संयम के लिए मिला है, ये तन भोगों के लिए नहीं मिला, ये तन विषयों के लिए नहीं मिला, यह तन केवल संयम हेतु जब होगा, और किसी भी हेतु से किसी अन्य वस्तु की चाह नहीं होगी, तन में किंचित भी मूर्छा जब नहीं होगी, ऐसा अवसर कब आएगा। तन में मूर्छा नहीं है, विषयों की वांछा नहीं है, अन्य किसी वस्तु को चाहता नहीं हूँ, तो फिर क्या चाहते हो तुम ये बताओ। सिर्फ एक ही चाह है, अपने स्वरूप को जानने की, अपने को पहचानने की। ये काम नहीं हुआ, अपने आप को ही नहीं जाना, सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। ये कहता है मैं ज्ञानवान हूँ, कहता है मुझ में ज्ञान है, कि अच्छा जानता है कि किसको जानता है, कि सबको जानता हूँ मैं, सबकी खबर है मुझे, आपको पता है कहाँ क्या हो रहा है, हमें यहाँ बैठे बैठे इस बात की खबर है कि हिंदुस्तान के कौन से कोने में कहाँ क्या हो रहा है। कि वाह क्या बात करते हो आप, यहाँ बैठे बैठे आपको अमेरिका की खबर है, इंडिया की खबर है, कौन से देश में कहाँ क्या हो रहा है सब खबर है। हम पूछते हैं तुम्हें अपने आप की भी खबर है क्या, ये क्या होता है। अपने आप की खबर के बिना धर्म नहीं होता। तो किसी भी हेतु से अन्य वस्तु को नहीं चाहूं, सिर्फ अपने को ही चाहने की बात कही, और तन में किंचित भी मूर्छा जब नहीं हो, फिर कहते हैं दर्श मोह क्षय से उपजा है बोध जो। ये सबसे पहले धर्म की शुरुआत, दर्शन मोहनी के क्षय से धर्म की शुरुआत होती है। दर्शन मोहनी का क्षय माने मिथ्यात्व का चले जाना, मिथ्या दर्शन का अभाव, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनके अभाव से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जब ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो होता है असली धर्म। तो दर्श मोह क्षय से उपजा है, उत्पन्न हुआ है बोध माने सम्यक दर्शन। तन से भिन्न मात्र चेतन का ज्ञान जब, तन से भिन्न मात्र चेतन का ज्ञान, चारित्र मोह का क्षय जिससे हो जाएगा, वर्ते ऐसा निज स्वरूप का ध्यान जब। ऐसा निज स्वरूप का ध्यान जब वर्तेगा तो चारित्र मोह का भी क्षय हो जाएगा। दर्श मोह का क्षय तो हो गया और चारित्र मोह का क्षय भी धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन कब? जब तन से भिन्न मात्र चेतन का ज्ञान हो। यहाँ तो तन से भी भिन्न ज्ञान की बात कर रहे हैं, और हमारा तो ज्ञान संयोगों में अच्छा है। यहाँ तो कह रहे हैं कि आपका ध्यान और आपका ज्ञान ये सब तन से भी जब भिन्न हो जाए, शरीर से भी जब आपका ध्यान और ज्ञान भिन्न होगा, फिर कौन सी पर वस्तु का ध्यान ज्ञान रह जाएगा, किसके प्रति आसक्ति का भाव रह जाएगा? जो निरंतर आसक्ति है ना, असंतुष्टि पंचेंद्रीय विषय भोगों में, ये काम नहीं आएगी कभी भी। मुझे ध्यान आता है, एक राजा था, जन्मदिन था उसका, और उसने ऐसा नक्की किया कि आज मैं जो भी लोग मुझसे मिलेंगे मैं उनको संतुष्ट करूंगा और सुखी करूंगा। आज मेरा जन्मदिन है, मुझसे हर व्यक्ति संतुष्ट होने चाहिए, मैं उनको चाहे जो मुझे करना पड़े, जो भी देना पड़े मैं उन्हें दूंगा, लेकिन उन्हें खुश रखूंगा मैं, ऐसा मेरा जन्मदिन मनाऊंगा। घर से बाहर निकला और उसे एक भिखारी दिखा, उसने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। भिखारी की तरफ जैसे ही तांबे का सिक्का गया, वो सिक्का नाली में गिर गया। सिक्का नाली में गिर गया तो भिखारी हाथ डाल करके सिक्का निकालने की चेष्टा करने लगा, काफी प्रयास पर भी नहीं निकला, तो राजा ने उसको एक दूसरा तांबे का सिक्का दे दिया। उस तांबे के सिक्के को उसने अपनी जेब में रखा और फिर नाली में से सिक्का ढूंढने लगा। राजा को लगा कि यार ये तो संतुष्ट नहीं है। उसने सोचा कि ये गरीब थोड़ा ज्यादा ही दिखता है। उसने अपने पास से एक चांदी का सिक्का निकाल करके उसको दे दिया भिखारी को। भिखारी ने चांदी का सिक्का लिया, अपनी जेब में रखा, राजा की एक दो बार जय जयकार लगाई, बहुत खुश हुआ, और फिर जाकर के नाली में से वही सिक्का ढूंढने लगा। राजा को लगा कुछ ज्यादा ही गरीब है, उसने एक और सोने का सिक्का दे दिया उसको। भिखारी बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर वही जाकर के हरकत, नाली में जाकर के सिक्का। राजा को बहुत बुरा लगा, राजा को अपनी बात याद आ गई, आज मेरा जन्मदिन है और जब तक मैं इसे संतुष्ट नहीं कर दूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आज तो मैंने सोचा था कि मेरा जन्मदिन है, सबको संतुष्ट करना है। बहुत नाराज हुआ वो, सोने का सिक्का दे दिया, उसके बावजूद भी वो तांबे के सिक्के के पीछे पड़ा हुआ है। उसने कहा कि भैया तुम क्या चाहते हो, लो मेरा आधा राज्य ले लो तुम, अब तो संतुष्ट हो जाओगे, क्या चाहिए तुम्हारे को सुखी होने के लिए? बोला महाराज आधा राज्य तो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे तो वो तांबे का सिक्का चाहिए। जिनकी ऐसी प्रवृत्ति हो उन्हें दुनिया में कौन सुखी कर सकता है, बतलाइए। यहाँ श्री गुरु हमारे को चैतन्य तत्व का वैभव बतला रहे हैं, वो आत्मा का वैभव बतला रहे हैं, वो अनंत गुणों की संपदा हमारे को बतला रहे हैं, लेकिन वो सब संपदा को प्राप्त करके भी, स्वयं वो चैतन्य तत्व होते हुए भी हमें उसमें अनुकूलता नहीं लगती, हमें उसमें अपनापन नहीं लगता, और उसे छोड़ करके फिर वही पंचेंद्री के वही गंदी नाली के विषय भोगों की तरफ दौड़ते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो इसी में मजा आता है, क्या हो गया है तुझे? निज स्वभाव के बारे में कह रहे हैं ये तन संयम के लिए मिला है भैया, ये तन भोगों के लिए नहीं मिला है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन दीक्षा ली, उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी दीक्षा लेकर के मनाई, उन्होंने अपने जन्मदिन को दीक्षा लेकर के सार्थक किया, संयम अंगीकार करके सार्थक किया। और हम हमारा जन्मदिन कैसे मनाते हैं? जमीन आसमान का अंतर है दोनों में, बोलो आप। हम कैसे मनाते हैं और उन्होंने कैसे मनाया? ये तन केवल संयम हेतु, दूसरा कोई हेतु ही नहीं है। किताब रसना इंद्रिकाई के लिए मिली है, खाएंगे नहीं तो मिला किस लिए है ये? क्या बात कर रहे हो आप, खाने के लिए नहीं मिला, भजन के लिए मिला है, भोजन के लिए नहीं। मात्रा हटा दो बस, वही हटाना है, इतना ही उतारना है, भोजन के लिए नहीं, भजन के लिए। तो फिर भोजन छोड़ दें, भोजन छोड़ देंगे तो भजन भी नहीं कर पाएंगे। अरे भैया भोजन नहीं, भोजन में रस छोड़ना है, भोजन नहीं भोजन के प्रति आसक्ति तोड़नी है। हम भोजन की बात करते हैं तो तू भोजन ही छोड़ता है, आसक्ति तो तोड़ता नहीं है और भोजन छोड़ करके भोजन भोजन को याद करता रहता है। बात ये नहीं है, तन में किंचित भी मूर्छा नहीं हो देह के प्रति, किसी भी हेतु से अन्य वस्तु को न चाहे, और दर्शन मोह के क्षय से जो बोध प्रकट हुआ है, कहते हैं तन से भिन्न मात्र चेतन का ज्ञान, मात्र माने ओनली नथिंग एल्स, इतना सा धर्म है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए धर्म के लिए। तन से भिन्न मात्र चेतन का ज्ञान होवे, चारित्र मोह का जिससे क्षय हो जाए, वर्ते ऐसा निज स्वभाव का ध्यान, जब ऐसा जब निज स्वभाव का ध्यान वर्तेगा, जो दर्शन मोहनी के क्षय में निमित्त बना है, यदि वो वर्तने लगेगा तो अल्प काल ऐसा होगा कि उस चारित्र मोह का भी क्षय हो जाएगा। गुणस्थान चढ़ने की बात करते हैं, धीरे 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 दर्शन मोह का क्षय करके पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में पहुंचा दिया, और चौथे गुणस्थान में संतुष्ट होने के लिए नहीं, ये संतुष्टि बाधक है। चौथे गुणस्थान में संतुष्ट हो गया तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। बोलो आप, सम्यक दृष्टि यानी जीव का संसार परिभ्रमण सम्यक से छूट जावे तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन माने अनंत काल है, अनंत काल है। कहते हैं पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में अनंत सागर होते हैं। वापस बोलता हूँ, क्या कह गया मैं, पुद्गल परावर्तन के अनंत में भाग में, पुद्गल परावर्तन का एरिया लो, टाइम लो, उसमें से अनंत हिस्से करो और एक हिस्से को पकड़ो, उसमें अनंत सागर बीत जाते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पंक्ति है, कुटरमल जी ने दी है, एक हिस्से में अनंत सागर, दूसरे हिस्से में अनंत सागर, तीसरे हिस्से में फिर अनंत सागर, चौथे हिस्से में फिर अनंत सागर, पांचवें हिस्से में फिर अनंत सागर, 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 अनंत सागर अनंत बार बीत जाए, इतना होता है पुद्गल परावर्तन। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल होता है। सम्यक दर्शन ले लिया तो क्या कर लिया आपने, कोई बहुत बड़ा चीज मान लिया, संतुष्टि घातक है। मोक्ष मार्ग में संतुष्टि बहुत बड़ी घातक है, और जगत और घर गृहस्थी संसार में रहते हुए संतुष्टि आवश्यक है। कल भी कही थी मैंने ऐसी बात, माने जब तक आप विषय भोगों से संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपनी आजीविका से संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आप धन से संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपने परिवार वालों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं होंगे, कैसे चलेगा। वहां तो संतुष्टि चाहिए, दुनिया में हर जगह पर संतोष चाहिए, भोजन में जो बनाए उसमें संतोष चाहिए, मिठाई मिली तो ठीक और नहीं मिली तो ठीक उसमें संतोष चाहिए, डॉलर दो मिले तो ठीक और 2000 मिले तो ठीक उसमें संतोष चाहिए, वहां तो संतुष्टि चाहिए। और यहाँ ठीक है, एक टाइम स्वाध्याय कर लिया, इससे ज्यादा और क्या करेंगे, घातक है, बाधक है ये। सत्संग कितने दिन करना, सप्ताह में कितने दिन करना, 3 दिन, हर रोज होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए। ये आत्मा की खुराक है भैया, तन की खुराक दिन में 2-3 टाइम लेता है, तो चेतन की खुराक, तन और चेतन, तन की खुराक दिन में 4 टाइम चाहिए तुझे, तो चेतन की खुराक भी दिन में 4 टाइम चाहिए कि नहीं, उस खुराक के बिना काम नहीं चलता है। आप लोगों का तो दैनिक चलता होगा, भले ही वहाँ मंदिर वालों को सत्संग 3 टाइम कराते हो, अपना सत्संग तो ये है। सत्संग का अर्थ ऐसा नहीं कि साधारणी लोग बैठेंगे तो सत्संग होगा, अरे सत्य माने त्रिकाली ध्रुव आत्मा, सत्य माने चैतन्य तत्व, सत्य माने में ज्ञायक तत्व, और उसके संग का नाम सत्संग है। बाहर में साधर्मियों का मिलना हो तो अच्छी बात है, और बाहर में साधर्मी कदाचित न मिले तो मैं अपने त्रिकाली ध्रुव सत स्वभावी आत्मा के साथ में मेल करता हूँ, उसका नाम सत संग है, उसे सत्संग कहते हैं। सच की जिसे खबर नहीं हो उसे सत्संग कैसा? हमें सच की खबर नहीं है, हम कहते हैं सत्संग। बोलो, कहानी सुनने का नाम सत्संग नहीं है, दो तीन दिन टाइम पास करने का नाम सत्संग नहीं है, घर में बैठे मन नहीं लगता चलो ठीक है कुछ सुने आएंगे, कुछ थोड़ी अच्छी बातें ही सुन लेंगे, इसका नाम सत्संग नहीं है। ये सत्य सत पंथ महंत पुरुष के पंथ की जहाँ बात करते हैं, दर्शन मोह के क्षय से, और दर्शन मोह का क्षय कैसे, जब निज स्वरूप में विचरण करे तब, इसका नाम सत्संग है। निज स्वरूप में विचरण करने को सत्संग कहते हैं। सोचना जरा आप सत्संग के बारे में क्या समझते हैं, और यहाँ ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष सत्संग के बारे में क्या कहते हैं। सत की परिभाषा देख लो, उत्पादने द्रव्य उत्तम सत, और संग जोड़ो उसके साथ में, तो उत्पादने द्रव्य युक्तम होता है सत, और उसके संग को कहते हैं सत्संग। सत माने सच्चा, सच्चाई के मार्ग पर चलना, और सत्य क्या है, वस्तु का स्वरूप ही सत्य है, और बाकी जो हमें सब दिखाई देता है वो तो सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। आत्मलीनता मन वचन और काया योग की, मन वचन काया और योग की जब आत्मलीनता होगी, चौथा छंद आत्म स्थिरता तृण संक्षिप्त योगनी, मन वचन और काय के माध्यम से आत्म स्वरूप में जब स्थिरता होगी, मुख्य रूप से आत्म स्थिरता, मन से भी वचनों से भी और काय से भी, कब तक के लिए कह रहे हैं कि रही देह पर्यंत, जब देह पर्यंत ये काम होगा तो समझ लीजिए आत्मानुभूति होगी, तो मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होगा और अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति होगी। आगे दो पंक्तियों में तो बड़ा रजब की बात कह दी इन्होंने, भयकारी उपसर्ग परिचय हो महा, किंतु न होवेगा स्थिरता का अंत जब। विचलित होने का मार्ग नहीं है ये, जो विचलित हो गया तो गया, यहाँ विचलित नहीं होना बिल्कुल भी। कष्ट आएंगे, संकट आएंगे, परेशानियां आएगी, आफतें भी होगी, आकुलता भी होगी, घबराहट भी होगी, टेंशन भी होगी, जीव खराब होगा, ऐसा लगेगा कि मौत नजदीक आ रही है, मौत दिखने लगेगी, भूख प्यास सर्दी गर्मी न मालूम क्या क्या सताएंगी। ये कह रहे हैं भयकारी उपसर्ग, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, कभी भी मेरा न्याय मार्ग से पद डिगे नहीं। बोलो कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं ज्ञानियों के ऊपर, उन उपसर्गों को देख करके उन संयम का मार्ग नहीं अपनाओ तो क्या होगा, बोलो किस भरोसे पर जीतते होंगे वो उन उपसर्गों को, अभी विचार किया है आपने उन उपसर्गों को कैसे जीतते होंगे, उन परिचयों को कैसे जीतते होंगे, कैसी कैसे परिचयों की परिस्थितियां बन जाती है, आहार के लिए निकले, भोजन के लिए निकले और भोजन मिला नहीं, तीन दिन पांच दिन हो गए भोजन नहीं मिला, रोजाना आहार के लिए जा रहे हैं, एक दिन आहार व्यवस्था हुई और भोजन ऐसा मिला जो इतना गरिष्ठ था, भयंकर जेठ माह की गर्मी, मई जून के महीने की ऐसी खतरनाक गर्मी जिस गर्मी में बिना पानी के रहा नहीं जाए, और भोजन ऐसा आहार में मिला कि जो और अधिक पानी मांगता हो, और अब दोबारा पानी पीते नहीं है, और कई दिनों तक कंठ ऐसे रुंध गए हो, मुख से एक शब्द भी निकल नहीं पाता हो, कैसे परिचय ऐसे होंगे वे लोग, सर्दी कैसे बर्दाश्त करते होंगे, गर्मी कैसे बर्दाश्त करते होंगे, क्या आधार होता होगा उसके पीछे, क्या होती है गर्मी, गर्मी लगती है आत्मा को, आत्मा गर्म नहीं होता कभी भी, ये तन गर्म होता है, ये जिसे हम गर्मी कहते हैं ये गर्मी पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की उष्ण पर्याय है, کیا مقدمہ ہے؟ گرمی کیا چیز ہے بولو؟ دیکھو ذرا گرمی کی گہرائی میں جاؤ، گرمی مانے کیا چیز؟ گرمی کس کی پریائے ہے؟ گرمی یدی آتما کو لگتی ہے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں آتما کے کون سے گن میں ہے گرمی، آتما کے کون سے گن کی پریائے ہے گرمی؟ گیان گن کی پریائے کا نام گرمی ہے، درشن گن کی پریائے کا نام گرمی ہے، چارتر گن کی پریائے کا نام گرمی ہے. گرم پنا کیا چیز ہے؟ ہمیں لگ رہی ہے نا گرمی، لو لگ رہی ہے، اتنی گرمی ہے، تپ رہے ہیں. یہ تپن اسپرش ہے، یہ اشنتا اسپرش ہے، چھونے سے خیال میں آ رہی ہے، اور یہ اسپرش گن کی پریائے ہے. یہ اسپرش گن پودگل دربے کا ہے. اس کا مطلب پودگل دربے کے اسپرش گن کی اوشن نامک پریائے کو گرمی کہتے ہیں. سردی کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح سے لگاؤ، پودگل دربے کے اسپرش گن کی شیت پریائے کو، ٹھنڈ پریائے کو ہم سردی کہتے ہیں. ہم کس میں اپسرگ لگ رہا ہے؟ پریشے ہیں یہ سب، ان پریشاؤں کو جیتنے کے سندرب میں کہہ رہے ہیں یہاں پر. بھے کاری اپسرگ پریشے ہو مہا، ایسا مہان پریشے ہو، گھور پریشے کے اپسرگ بھے کری، آوی شکے نہیں تے سرکانو انت جو. کب تک کریں یہ؟ جب تک استھرتا کا انت نہ آ جائے. کنتو نہ ہوئے گا استھرتا کا انت جب، جب تک یہ استھرتا کا انت نہ ہوئے، مانے جب تک آتما سوروپ میں ہی پوری طرح سے استھرتا نہ ہو جائے، تب تک یہ مہا اپسرگ اور پریشے ہے، یہ بھائی کاری دکھائی دیتے رہیں گے. اور آتما سوروپ میں لین ہو جانے پر یہ بھائی کاری نہیں لگتے، یہ کشت کاری نہیں لگتے. کشت دکھتا نہیں ہے ان میں، شریر کے کشت کشت نہیں لگتے. پھولوں کی سیاہ میں رہتے ہوئے انہیں کشت لگتا ہے، اور کانٹوں میں سوتے ہوئے انہیں کشت نہیں لگتا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے ان کے اپیوگ کو؟ اچھا مشٹان بھوجن کرتے ہوئے گھر میں انہیں کشت لگتا ہے، اور وہاں روکھا سوکھا بھوجن کرتے ہوئے انہیں کشت نہیں لگتا ہے. یہاں سکھ سیاح انہیں سہاتی نہیں ہے، اور وہاں کنکریلی زمین شلا پر سوتے ہیں، وہ انہیں پرتیکول نہیں لگتی. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ دیکھنے کا نظریہ بدل گیا ہے. وہ اپنے آپ کو اس شریر سے بھن انوبھو کرتے ہیں. جو جیو شریر سے بھن انوبھو کرتے ہیں، پھر ان کو شریر کے مادھیم سے ہونے والے کشت کشت روپ نہیں لگتے. اتنا سا کام کرنا ہے، دیہ میں بھلے ہی رہیں لیکن دیہ کے پرتی ایکتو بدھی ٹوٹ جائے. یہ دیہ کو چھوڑنا دھرم سمجھتا ہے، دیہ نہیں چھوڑنا، دیہ کے پرتی اپنا پن توڑنا ہے. دیہ بنی رہے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن راگ بنا رہے تو کام نہیں چلے گا، موہ بنا رہے تو کام نہیں چلے گا. موہ راگ دیش اور کشائیں جب تک ہے تب تک دھرم نہیں ہے، اور جب دھرم ہے تو پھر دیہ بھلے ہی بنی رہے، کشائیں نہیں ہے، وبھاؤ بھاؤ نہیں ہے. جتنا ہو سکے اپنی کشائیوں سے اپنی بچنے کی کوشش کریں. نرنتر یہ آتم نرکشن یہ سروادھک ضروری ہے. دھرم کی شروعات یہیں سے ہوگی، آتم نرکشن چاہیے. ہر جگہ پر قدم قدم پر آتم نرکشن کرتے چلیے، اپنے آپ کو دیکھتے چلیے، اپنے آپ کو ٹٹولتے جائیے، اپنے آپ کی پریکشا کرتے جائیے. کوئی دوسرا کچھ بھی کہے، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیسے ہیں. جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ یہ غلطی تو میری تھی. کوئی ویکتی ناراض ہو گیا ہمارے اوپر، بگڑ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، کوئی ویکتی ہمارے کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وچار کرو بس شانتی سے بیٹھ کر کے، استبد ہو جاؤ، شانتی سے بیٹھ کر کے وچار کرو اپنے آپ کے بارے میں، آپ کو کیسا لگتا ہے، ان کے کہنے پر کیسا لگتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سامنے والوں کے دوارا کچھ بھی برے شبد کہہ دینے پر آپ کو برا لگا تو اس میں کیا چیز بری لگی آپ کو؟ ان کا بولنا، انہوں نے کہا اس لیے برا لگا. اچھا وہ نہیں کہتے تو بھی میں تو جیسا ہوں ویسا ہی ہوں نا، کہنے اور نہیں کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ کبیر داس جیسے لوگ تو یہ کہتے ہیں، نندک نیرے راکھیے، आंगन कुटी छवाए। बोलो ये कबीर जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, जैन नहीं थे। बोलो लेकिन जैनियों का प्रभाव तो बहुत दिखता है उनके दोहों पर। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन लिए निर्मल करे स्वभाव। बिना पानी और बिना साबुन के ही यदि उन निंदा करने वाले व्यक्तियों को आप अपनी कुटिया में जगह देंगे तो वे साबुन पानी के बिना ही आपके स्वभाव को निर्मल कर देंगे। सोचिए जरा, हमें प्रशंसा करने वाले अच्छे लगते हैं, निंदा करने वाले बुरे लगते हैं। हमारा मित्र कौन? प्रशंसा करने वाले हमारे मित्र नहीं है, निंदा करने वाले हमारे मित्र हैं। दृष्टि बदल गई। हम प्रशंसा करने वालों को अपना मित्र समझ रहे थे, यहाँ वस्तु स्थिति ये है कि निंदा करने वाले हमारे सच्चे मित्र हैं। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाले यदि निंदा न करें तो हमारे में पवित्रता कैसे आए? निंदा करने वाले निंदा न करें तो हम हमारी गलतियों को कैसे निकालें? मतलब हमारी गलतियों को निकालने के लिए तो निंदा करने वाले चाहिए। प्रशंसा करने वाले तो इतनी प्रशंसा करते हैं कि हमें हमारा ध्यान गलतियों की तरफ जाता ही नहीं है। सुधार करना है ना, निर्मल होना है, पवित्र होना है, मोक्ष के मार्ग पर चलना है तो कमियों को तो दूर करना पड़ेगा। तो कमियां, अपनी कमी अपने को कभी नहीं दिखती, उसे दिखाने के लिए गुरु चाहिए। हमें हमारी गलती कभी नहीं दिखती, हमें कभी नहीं पता लगता हमारी क्या गलती है, हम कौन सी जगह पर मिस्टेक कर रहे हैं। खुद को दिखती ही नहीं है, दूसरे को ही दिखेगी। इसलिए जिसे हमारी गलती दिखती है वो हमारा गुरु है। बोलो, जो हमारी गलतियां देखे, जो हमारी गलतियां बतलाए, तुम्हें ये काम नहीं आता, तुम्हें ऐसा नहीं आता, तुम्हारे में इतनी अकल नहीं है। सोचो अपने आप के बारे में, ये गलती बतला रहे हैं, हमारे में अकल नहीं है। हमें सोचना है कि क्या वास्तव में मेरे में अकल नहीं। लेकिन होता क्या है कि जो गलती बतलाता है उसे गुरु तो मानता नहीं है, उसके ऊपर बिगड़ता और है तो फिर एक और गलती कर देता है। जिन्होंने गलती बतलाई हमारी तो उस गलती को सुनकर अपनी गलती को सुधारना चाहिए ना, लेकिन सुधारता तो नहीं है और फिर एक और गलती करता है, उसे चुप करता है, उसे हटाना चाहता है, उसको अपने निगाह के सामने नहीं रखना चाहता है। हमें कभी कभी तो लगता है तुम बातें तो ये करते हो कि हमें निर्मल होना है, पवित्र होना है, और कोई पवित्र करने वाला तुम्हारे आसपास में होता है तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता है। ये कैसी मायाचारी करते हो? मन वचन काया की एक रूपता नहीं दिखती है यहाँ पर। कहते कुछ हो और मानते कुछ हो, स्वीकार कुछ करते हो आप, ये कह रहे हैं तीनों की एक रूपता चाहिए। मन वचन काय तीनों की एक रूपता, और तीनों की एक रूपता पूर्वक आत्मा में लीनता, आत्मलीनता, लीन हो जाओ अपने में। जब मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आते हैं तो वे भागते नहीं है, न भागते हैं और न भगाते हैं। बाहर में जंगली जानवर आ गया कोई, मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, अब क्या करेंगे? उसके आने पर उसको भगाएंगे? नहीं भगाते, उसको भगाते नहीं है। तो फिर खुद भाग जाते होंगे कि नहीं? खुद भी नहीं भागते हैं, ना उसको भगाते हैं ना स्वयं भागते हैं। तो फिर क्या करते हैं? अपने उपयोग को वहां से हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर करते हैं, उपयोग अंदर में ले जाते हैं। काम हो गया, सरल क्या मार्ग होगा? बोलो, हिलना तक नहीं है आप जहाँ है वहाँ से, चलना तक नहीं है। ये कितना स्वाधीनता का धर्म है, ये अद्भुत धर्म है। कोई सच में जैन धर्म जैसी इतनी स्वाधीनता दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। दुनिया का कोई धर्म इतनी उत्कृष्ट स्वाधीनता की चर्चा नहीं करता कि आपको धर्म करने के लिए कहाँ जाना है। बोलो, कहीं भी नहीं जाना है, कहीं जाना ही नहीं है, उठना ही नहीं है। धर्म करने के लिए इंडिया जाना पड़ेगा क्या? जरूरत नहीं है इंडिया जाने की। तो फिर मंदिर तो जाना पड़ेगा सेंटर में, वहां भी जाने की जरूरत नहीं। अरे ये तो शक्ति हो तुम्हारी تو جن مندر جانا اور کداچت جن مندر جانے کی شکتی نہ ہو تو یہ مت سمجھ لینا کہ اب تو میں دھرم نہیں کر سکتا, کیونکہ دھرم پرادھینتا کا نام نہیں ہے, دھرم سوادھینتا کا نام ہے. دھرم میں پرتنترتا نہیں ہوتی, دھرم میں سوادھینتا ہوتی ہے. سوادھین سکھ سوادھین آنند لو جہاں بھی پراپت ہو. شریمت جی کی پنکتیاں ہیں, نردوش
سکھ نردوش آنند لو گمے تیاتی بھلے.
ہاں گجراتی میں بولتے ہو, ہم ہندی بولتے ہیں. جہاں سے بھی پراپت ہو, نردوش سوادھین پرتنترتا نہیں بالکل بھی, تن کی بھی پرادھینتا نہیں ہو. جہاں یہ سب تن کی پرادھینتا ہی تو ہے, میری تو شریر کی استھتی ٹھیک نہیں ہے تو میں اب تو اپواس ہی نہیں کر سکتا, اب کیسے دھرم ہوگا, یہ تن کی پرادھینتا, اس پرادھینتا کا بھی کام نہیں ہے. دیہ کی بھی پرادھینتا جہاں نہیں ہو, کیونکہ بھیا دیہ سے بھن ہے آتما, آتما کا دھرم آتما سے ہوتا ہے, دیہ سے آتما کا دھرم نہیں ہوتا. پر سے آتما کا دھرم کیسے ہوگا, ہم نے آتما کا دھرم پر سے سمجھ رکھا ہے. بھے کاری اپسرگ اور پریشے کے کال میں بھی وہ اپنے اپیوگ کو اپنے اندر میں لے جاتے ہیں اور دھرم کرتے ہیں, اصلی دھرم ہوتا ہے. جب تک ایسے سوروپ میں استھرتا نہیں ہوگی تب تک اپسرگ اور پریشے آدی بھے روپ دکھائی دیتے رہیں گے, کشٹ روپ دکھتے رہیں گے, اور جب اپنے میں استھرتا ہوتی ہے تو کوئی کشٹ نہیں دکھتا. آ جاؤ اپسرگ اور کیا فرق پڑتا ہے, آنے دو اپسرگوں کو. ارے اپسرگ اور پریشاؤں کا مارگ تو انہوں نے خود نے چنا ہے, خود نے سویکار کیا ہے. اپسرگ اور پریشاؤں سے ڈریں گے وے, گھر چھوڑ کر کے پریوار چھوڑ کر کے گرہستھی چھوڑ کر کے جنگل کا مارگ جن گیانیوں نے اپنایا, پھر اپسرگوں کی پرواہ کریں گے, پھر کرور پشوؤں سے ڈریں گے. جانے کے پہلے ہی پتا تھا کہ وہاں تو کرور پشوؤں سے سامنا ہوگا, ہونے دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھو سنیم ہی کے لیے یوگ کی ورتی ہو, پانچواں شبد سنیم نہ تو تھی یوگ پرورتنا سوروپ لکشے جن آگیا آجین جو تی پن شن شن گھٹتی جاتی ستھتی ماں انتے تھائے نج سوروپ مالین جو. کیا عجب بات کہتے ہیں,
پانچواں
چھٹا گوٹ چھٹا ساتواں ساتواں ہے. کیا کہہ رہے ہیں, سنیم نہ تو تھی یوگ پرورتنا, سنیم کے ہیتو سے یوگوں کا پرورتن. یوگ کس لیے پرورتن کریں گے بولو, سوروپ میں استھر ہونے کے لیے. سوروپ لکشے جن آگیا آدھین جو, نج سوروپ کا لکشے کر کے نج سوروپ کے آگیا کے انوسار, جن کی آگیا کے انوسار نج کا آشرے. اس میں بھی بڑی گجب بات کہی ہے, نج کا آشرے اکیلا نہیں, جن آگیا کے انوسار نج کا آشرے. کیا کہہ دیا, جن آگیا آدھین جو سوروپ لکشے. آج تک ہم نے سوروپ لکشے کی بات تو کی لیکن جن آگیا کے انوسار سوروپ لکشے کی بات نہیں کی. آتم سوروپ کا لکشے کرنے کی تو بات کی ہم نے, آتم سوروپ کا لکشے کرنے کی, آتم سوروپ کیا ہے اور آتم سوروپ کا لکشے کرنے کی ودھی جینیندر دیو کیا بتلاتے ہیں وہ نہیں اپنایا ہم نے آج تک, کبھی بھی نہیں اپنایا آپ نے. سنیم کے ہیتو سے یوگوں کی پرورتنا, سوروپ کے لکشے سے جن آگیا کی آدھین تھا, جن آگیا کے انوسار آدھین مانے ان کے انوسار, اور تے پن کھن کھن گھٹتی جائے. کیا گھٹتی جائے, یہ جو استھتی ہے یوگوں کی پرورتی ہے, یہ پرورتی بھی کھن کھن گھٹتی جائے, یوگوں کی چنچلتا بھی پرتی کھن گھٹتی جائے. دھیرے دھیرے اوپر چڑھنے کی بات کر رہے ہیں, گنستانوں کو چڑھنے کی بات کر رہے ہیں, دھیرے دھیرے ہر قدم اپنے سوروپ میں استھرتا مانے موکش کے لیے ہو. मुक्ति प्राप्ति के लिए। थे पण क्षण क्षण घटती जाए स्थिति माँ अंत थाए, अंत में क्या हो, निज स्वरूप माँ लीन जो, अंत में निज स्वरूप में ही जाकर के लीन हो जाएं। अंत समय ऐसा आए जब मैं निज स्वरूप में ही लीन हो जाऊं, उसे कहते हैं समाधि। समाधि किसका नाम है? अपने स्वरूप में लीन हो जाने को समाधि कहते हैं। ये समाधि है, ये संलेखना की बात करते हैं, समाधि की चर्चा करते हैं। संलेखना और समाधि को हमारे यहाँ भी थोड़े दिनों पहले, करीब 6-7 साल पहले एक केस लगा दिया किसी ने राजस्थान हाई कोर्ट में, ये कहकर के कि ये संलेखना और समाधि आत्महत्या है। बहुत चला ये केस, कंटिन्यू चलता रहा। अपना तो जैन समाज दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही सब शिथिलता इतनी है कि वो कोर्ट में एक तरफा फैसला होने वाला था कि ये आत्महत्या है। ये बात हमारे सामने आई अभी रिसेंट में, मैं जब यहाँ आया उसके पहले पूरा फाइनल करके आया मैं एक एक चीज वकीलों के साथ में बैठ करके। मैंने सारे दिगंबर श्वेतांबर सब आगमों में से वो सारे प्रमाण निकाले कि जो प्राचीन प्रमाण है और जिनमें इन बातों को सिद्ध किया गया है कि यह आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या में और इसमें बहुत फर्क है। आत्महत्या करने वाला दुखी होकर के आत्महत्या करता है और समाधि लेने वाला सुखी होकर के समाधि लेता है। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। वहां उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो पीछा छुड़ाना चाहता है और यहाँ ये पीछा छुड़ाना नहीं चाहते, ये अपने स्वरूप में लीन होना चाहते। वहां तो परिस्थितियों से छूटकर आत्महत्या करना चाहता है और यहाँ ये चाहता है कि अब जीवन संभव नहीं है तो इसलिए अपने स्वरूप में लीन हो जाना चाहिए, इसी में सार्थकता है। बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ये क्षण क्षण अपनी स्थिरता ज्यो ज्यो बढ़ती चली जाती है समाधि की ओर बढ़ता जाता है ये जीव, मुक्ति की तरफ बढ़ता जाएगा, समाधि की तरफ बढ़ता जाएगा। ये असली समाधि है। कितनी गजब मार्मिक बात कह दी, जिन आज्ञा के अनुसार निज का आश्रय संयम ही के लिए योग की वृत्ति हो, योगों की वृत्ति संयम के लिए हो, निज का आश्रय हो और निज का आश्रय जिनके अनुसार हो, जिनके अनुसार निज का आश्रय और वो प्रवृत्ति क्षण क्षण घटती जाए, होऊंगा निज में हूँ निज स्वरूप में लीन जब अंत में निज स्वरूप में ही लीन हो जाऊं। फाइनली करना क्या है, धीरे धीरे क्या चाहते हैं हम? यही चाहते हैं अपने स्वरूप में ही लीन हो जाएं, बस इसके अलावा और कुछ चाहूं नहीं। अंत समय में अपने स्वरूप में ही लीन हो जाना चाहता हूं, और क्या चाहूं, और कछु वांछा नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की वांछा नहीं है। क्या जहाँ वांछाएं होती है वहाँ पीड़ा होती है, जहाँ वांछा होती है वहाँ कष्ट होता है, जहाँ वांछा होती है वहाँ तकलीफ होती है और जहाँ वांछा नहीं होती वहाँ कोई तकलीफ नहीं होती। एक ही वांछा, एक ही इच्छा, बस अंत समय में निज स्वरूप में लीन हो जाऊं, और कछु चाहूं नहीं। शायद शांति पाठ में आती है पंक्ति अंत में, बस लीन निज में ही रहूं प्रभु, और कछु चाहूं नहीं, और कछु वांछा नहीं। इस तरह से ये 5 छंद हुए हैं। अपने कितने पीरियड हैं अभी, सुबह के?
कल का है,
सैटरडे का है,
रविवार को शाम का
है। नहीं, यहाँ अभी सुबह का,
सुबह का दो ही,
फ्राइडे सैटरडे दो ही है। अच्छा, तो कल कोशिश करेंगे अपन कल ज्यादा लेने की, है ना, तो ये अपन इसको जिससे पूरा कर सके। कोई कोई शब्द यदि ना समझ में आए तो आप अवश्य पूछे, वैसे तो बहुत सरल है, है ना, सरल बहुत है लेकिन भाव बहुत गंभीर भरे हुए हैं, है ना। इसकी गंभीरता हमारे ख्याल में आए कि कहना क्या चाहते हैं, ये बात हमारे ख्याल में आए तो मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट होगा ऐसा अपूर्व अवसर आत्म स्वरूप में स्थिर होने का, अपने में लीन होने का, अपने में समा जाने का हमारे जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से मैं बात को देखा।
ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद समझा व्युते पद नहु श्रीतर गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सर गुरु परम ज्ञान
जय जय